आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृशाली जैन के साथ। इसराइल ने ईरान के साथ नाजुक युद्ध विराम के बीच अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि मध्य पूर्व में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जल्द ही कमर्शियल उड़ानों के जरिए घर लौट सकेंगे। पिछली रात यानी 24 जून को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल ने टेल अवीव से 119 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और उनके परिवारों को वतन वापसी उड़ानों के जरिए बाहर निकाला। ये स्पष्ट नहीं है कि इसराइल और ईरान से कितने ऑस्ट्रेलियाई वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन 4,000 से अधिक लोगों ने क्षेत्र छोड़ने में सहायता के लिए विदेश मामलों और व्यापार विभाग यानी डीफैट में पंजीकरण कराया है। रक्षाकर्मी मंत्री मैट कियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को विभाग के संपर्क में बने रहना चाहिए, हालांकि जल्द ही नियमित कमर्शियल उड़ानें भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। वहीं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट 7 महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो ABS के आंकड़ों के अनुसार मई में हेडलाइन इन्फ्लेशन 0.3% गिरकर 2.1% पर आ गई है, जो अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे निचला स्तर है। मासिक आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि ट्रिम्ड मीन इन्फ्लेशन 2.8% से घटकर 2.4% पर आ गई है। ये अंडरलाइंग इन्फ्लेशन का बड़ा संकेतक है। कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए ये आंकड़े खासतौर पर उत्साहजनक हैं। आर्थिक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि 2025 के अंत तक ब्याज दरों में 3 और कटौतियां हो सकती हैं, जिससे कैश रेट घटकर 3.1% तक आ सकता है। वहीं विपक्ष नेता सूजन ली ने कहा है कि लिबरल पार्टी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जेंडर कोटा लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेशनल प्रेस क्लब में दिए गए संबोधन में उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है और अब तक महिला भागीदारी बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं रहे हैं। वर्तमान में लिबरल पार्टी के 1/3 सांसद महिलाएं हैं, जबकि लेबर पार्टी में यह आंकड़ा 56% है। हालांकि पहले के लिबरल नेता जैसे टोनी एबट और मैल्कम टर्नबुल जेंडर कोटा का कड़ा विरोध करते रहे थे, लेकिन सूजन ली का कहना है कि वे अब एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सैकड़ों प्रथम राष्ट्र न्याय कार्यकर्ता विशेषज्ञ और समुदाय नेता एलिस स्प्रिंग्स में 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए जुटे हैं, जहां वे कारावास के साक्ष्य आधारित विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दा हाल ही में नॉर्दर्न टेरिटरी में 2 इंडिजिनस पुरुषों की पुलिस हिरासत में मौत के बाद फिर से केंद्र में आया है। बीते 34 वर्षों में जब 1991 में इस विषय पर रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तब से अब तक कुल 598 इंडिजिनस व्यक्तियों की हिरासत में मृत्यु हो चुकी है। ये रिपोर्ट तात्कालिक फेडरल अबोरिजिनल्स अफेयर्स मंत्री रॉबर्ट टिकनर ने संसद में प्रस्तुत की थी। उनका कहना है कि रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों पर अमल न होने से न्याय प्रणाली लगभग ढहने की कगार पर आ गई है। प्रोडक्टिविटी कमीशन के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया इंडिजिनस कैद दरों को कम करने के लिए निर्धारित क्लोजिंग द गैप लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया संस्थानों की आलोचना की है जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की सफलता पर संदेह जताने वाली एक लीक हुई खुफिया रिपोर्ट की खबर चलाई। CBS को लीक हुई शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सप्ताहांत में हुआ हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ ही महीनों के लिए रोक पाया है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया था कि ये ठिकाने पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। बाद में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अपने बयान को संशोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया, न कि पूरी तरह नष्ट किया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अब भी इस बात पर अड़े हैं कि परमाणु ठिकाना नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरान में राष्ट्रपति ट्रंप की कार्यवाही ने अमेरिका के हितों की रक्षा और युद्ध में प्रवेश के बीच का सही संतुलन बनाया है। और अंत में खबरें भारत से। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष इतिहास रचने को तैयार हैं। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनेंगे और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे। शुभांशु 25 जून को भारतीय समय से दोपहर 12:01 नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान के जरिए XM-4 मिशन के तहत उड़ान भरेंगे। ये मिशन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों को दिशा मिलेगी। इसरो ने इसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का बहुत बड़ा मोड़ बताया है और शुभांशु को गगनयान के शीर्ष दावेदारों में से गिना है। शुभांशु का कहना है कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों की यात्रा है, जिससे देश में एक नई पीढ़ी की जिज्ञासा और इनोवेशन को प्रेरणा मिलेगी। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए $60 मिलियन से अधिक का भुगतान किया है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग का मानना है कि यह मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत होगा। इसी के साथ 25 जून 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।